ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shivam.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவ மஹிமா பிரசன்ட் பாய் சுவாமி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
யம் ப்ரஹ்மா வருணேந்திர ருத்ர மருத ஸ்தந்தி திவ்யேஸ்தவே வேதைஷாங்க பத க்ரமோபநிஷதே காயந்தி யம சாமகா த்யானாவஸ்தி தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தி யம் யோகினோ யஷாந்தன்ன விதூ சுராசுரகணா தேவாய தஸ்மே நம. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீ சரஸ்வதி வ்யாஸம் ததோ ஜயமுதீரே. இந்திரியாணாம் அதிஷ்டாத்ரீ பூதானாம் சாகிலேஷு யா பூதேஷு சததம் தஸ்மை வ்யாப்தி தேவ்யே நமோ நம. வ்யாப்தி தேவ்யே நமோ நம. கங்கா தரங்க ரமணீய ஜடா கலாபம் நிரந்தர விபூஷித வாம பாகம் நாராயணம் பிரியமதங்கமதாபஹாரம் வாணாரசி புருபதிம் பஜ வீஸ்வநாதம். வாணாரசி புருபதிம் பஜ வீஸ்வநாதம். ஓம் பத்ரம் நோபவாதய மனஹ. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. போலியே சச்சிதானந்த பகவான் கீ. சத்கன் சித்கன் ஆனந்தகன் கல்யாண குணகண் நிலை அவ்யக்த அவிநாசி சர்வேஸ்வர் ஜெகத் நியந்தா ஜெகதாதார் கருணா வருணாலய் ஆசுதோஷ் சந்திர மௌலி சந்திர சூட சந்திர நாத் சந்திரசேகர் சம் சதாசிவ் கி அசீம் அஹேதுகி கிருபா கே சாத் பிராத்த கால கி இஸ் பாவன் வேலா மே பேட்கர் ஹம் லோக் விசார் கர் ரஹே தே சிவ தத்த பர் சிவ மஹிமா மஹிமன் பாரந்தே. ஜிஸ்கி மஹிமா அபரம் பார் ஹே, ஜிஸ்கி மஹிமா கா கோய் பாராவார் நஹீ ஹே, ஜிஸ்கா ஆதி மத்ய அந்த நஹீ ஹே, ஜோ அநாதி அனந்த பரம் சத்ய ஹே, சாஸ்வத் ஹே, நித்யாய சுத்தியாய நித்ய சுத்த ஹே, ஐசே பராத்பர் சிவ ஜோ ஹம் சபோ கே அந்தர் ஆத்ம ரூப் சே ஸ்தித ஹே, ஜோ ஸ்ருஷ்டி சே பூர்வ ஔர் ஸ்ருஷ்டி கே ரஹதே ஔர் ஸ்ருஷ்டி கே ந ரஹனே பர் பி, ஜோ ஸ்ருஷ்டி கே இன் தீனோ காரியோ கோ ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி விநாஷாய, இன் தீனோ காரியோ கோ நித்ய தர்சன கரே, பூத் வர்த்தமான் பவிஷ்ய மே ஜோ வ்யாப்த ரஹே, வஹி பரம் தத்வ சிவ ஹே த்ரிலோச்சனாய. யஹி உன்கே தீன் நேத்ர ஹே, இஸ் பர் ஹம் கல் சர்ச்சா கர் ரஹே தே. யே தீன் கால ஹீ வேதத்ரய ஹீ பகவான் சிவ கே நேத்ர ஹே, சிவ ஔர் சங்கர். சங்கர் கஹனே சே ஐசா லக்தா ஹே கி பகவான் சங்கர் ஜோ சகுண ஔர் சாகார் ரூப் மே சிவ சஹித் ஜோ மா கௌரா கே சங் நித்ய விராஜ்னே வாலே பகவான் சங்கர் ஜோ ஸ்ருஷ்டி கே பிரளயங்கர் தேவ் ஹே और वही निर्गुण निरात्यंत शुद्ध सात्विक स्वरूप में। कहीं कहीं ऐसा प्रसंग मिलता है कि भगवान शिव शंकर तामस रूप है, पर ये तामस का अभिप्राय ऐसा तामस नहीं समझे कि भगवान तमोगुणी हैं, शंकर तमोगुणी हैं, वो तमोगुण के कारण सृष्टि का संहार करते हैं, संहारकार देव है, रुद्र देव है। रुद्र का अर्थ एक ये भी होता है रुलाने वाला। बोले रुलाता कौन है, कौन किसको रुलाया जाता है, किसको त्रास दिया जाता है। बोले वो जो विधि विहीन कार्य करते हैं, जो विधि विमुख होकर चलते हैं, जो विधि की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उन्हें भगवान शिव उनके कर्मों का दंड देने के कारण उन्हें रुद्र भी कहलाया जाता है, रुलाया जाता है, रुलाने वाला। अर्थात कर्म के भोग को जो प्रदान करे, क्योंकि कर्म करते समय हम इतनी सहजता के साथ करते हैं, परंतु जब उसका परिणाम भोगने को मिलता है तब हमें बड़ा कष्ट होता है, रुदन करते हैं। और रुदन करके रो करके हम उस पीड़ा को सहन करते हैं, इसलिए भगवान शिव का नाम रुद्र हुआ। यूं तो रुद्र ब्रह्मा जी की भ्रगुटि से एक पुरुष का जन्म हुआ, और जो ब्रह्मा जी की भ्रगुटि से जन्म लिए और वो रुदन करने लगे, तो इसीलिए उनका नाम रुद्र रखा गया। परंतु भगवान शंकर जो रुद्र रूप में हैं, साकार रूप में हैं, उन्हें तमोगुण के कारण सृष्टि का संहार कारक देव भी कहा गया है। परंतु ये संहार में भी भगवान की कृपा ही है। जैसे बहुत समय से, बहुत देर से बालक खेल खेल रहा हो, और खेलते हुए बालक को इस बात की सुध नहीं है कि उसे कितनी देर खेल खेलते हुए हो गया है, वो अपने खेल में रमा हुआ है। परंतु पुत्र वत्सला माँ, उसके हृदय में पुत्र की ममता है, पुत्र के प्रति वात्सल्य है, स्नेह है, और उस स्नेह के कारण, उस वत्सलता के गुण के कारण माँ देखती है कि बच्चे को बहुत देर हो गई खेलते हुए, अब इसे विश्राम की आवश्यकता है। जब बालक के विश्राम की माँ को चिंता होने लगती है, तो माँ जिन खिलौनों के साथ बच्चा खेलता है उन खिलौनों को उसके सामने से अलग कर देती है, और बालक को पकड़कर बड़े स्नेह के साथ अपनी गोद में बिठा लेती है, और गोद में बिठाकर बड़े स्नेह के साथ उसे थपकी देकर के, उसे थपकी देकर, गोद में लोरी देकर बालक को सुलाकर उसे परम विश्राम देती है, आराम पहुंचाती है। भगवान की इसी प्रकार की जीव को आराम देने की जो एक लीला है, सृष्टि को उत्पन्न करने की लीला, सृष्टि के पालन पोषण की लीला, और सृष्टि के संहार की लीला, ये लीला भी भगवान की अत्यंत स्नेहमय है। ये प्रेममय लीला, स्नेह के बस भगवान देखते हैं कि अनादिकाल से जीव संसार में अविद्या के, अज्ञान के कारण जन्म मृत्यु के साथ संसार सागर में ये गोते खा रहा है। कभी डूबता है, कभी निकलता है, कभी बहता है, इस प्रकार इसे बहुत समय हो गया है। अब इन जीवों को परम विश्राम देकर सुख पहुंचाना है। भगवान उसके लिए एक लीला करते हैं, जिस लीला का नाम संहार लीला है। समस्त जीवों को, अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत संस्कारों के साथ भगवान उन्हें अपने में आत्मसात कर लेते हैं, तो उसी का नाम प्रलय लीला है। भगवान शिव प्रलयंकर देव हैं, प्रलय के कर्ता हैं, अर्थात सृष्टि के संहार देव है, कारक देव हैं। ये सोच करके कहा गया कि भगवान शिव तामस देव हैं। तामस देव का अर्थ ये नहीं है कि वो तमोगुणी हैं, अर्थात निस्त्रय गुणे। वो तीनों महिमन स्तोत्र में आप पढ़ते हैं ना कि भगवान शिव क्या है, बोले प्रभु आप तो निस्त्रय गुणे, तीनों गुणों से परे हैं, प्रकृति से परे हैं, और प्रकृति से परे होते हुए भी स्वयं अपनी माया को अंगीकार करके स्वयं शिव अपनी ही शक्ति की सत्ता को स्वीकार करके भगवान शिव इस प्रकार शक्ति के साथ युक्त हो जाते हैं कि शक्ति की महिमा को बताने के लिए, शक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए स्वयं भगवान अपने आप को न्यून करके, कहीं कहीं शक्ति की प्रधानता दिखाई पड़ती है तो कहीं कहीं शिव की प्रधानता दिखाई पड़ती है। भगवान शक्ति को जब प्रधान रूप में स्वीकार करते हैं सृष्टि के कार्य के लिए, तो ऐसा लगता है कि भगवान शिव स्वयं गौण हो जाते। इसीलिए तो भगवान शिव के स्वरूप को देखकर शंकराचार्य ने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु चिदाभस्मालेपो गरलमसनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशे कपदवी। प्रभु चिदा भस्मालेपो, शरीर में शमशान की भस्मी का लेपन करने वाले, चिदा की राख को, भस्म को जिन्होंने भस्मांग अंग में धारण किया हो, शरीर में मला हो, बोले शीत लगती है। भगवान शंकर कैसे रहते हैं? दिगंबर रहते हैं। दिगंबर का अर्थ होता है जिनके अंदर, जिनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। दिगंबर रहना एक अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत बड़ी चीज है नारायण। अर्थात जैसे हम अंदर हैं वैसे हम बाहर हैं। बाहर भीतर से एक होने का प्रतीक है। हमारे यहाँ साधुओं में भी दिगंबर साधु होते हैं, जैनियों में भी दिगंबर होते हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, और हमारे में नागा सन्यासी कहते हैं वस्त्र नहीं देते हैं। बोले ये एक अपने आप में बहुत बड़ी साधना है, अपने आप को निरावरण रखना। जैसे हम अंदर हैं वैसे ही हम बाहर रहेंगे, हम वैसे ही रहेंगे जैसे कि हम पैदा हुए थे। जब हम पैदा हुए थे तो कोई वस्त्र लेकर पैदा नहीं हुए थे, वस्त्र तो हमें पहनाया गया और पहनाना सिखाया गया, और धीरे धीरे वस्त्र हम अपने आप में धारण करने लगे और अपनी निरावरणता को हम छुपा रहे हैं। पर दिगंबर का अर्थ ये है कि जिसने अपने आप को अंदर बाहर से एक कर लिया हो, निर्विकार कर लिया हो। दिग कहते हैं दिशाओं को, जिन्होंने चारों दिशाओं को ही, दसों दिशाओं में अर्थात अपने आप को इतना व्याप्त कर लिया है, व्यापक रूप में देख लिया है कि दूसरा कोई उसे नजर ही नहीं आता है। लज्जा कब आती है? जब मुझे कोई दूसरा न देख ले। हम अपने आप को छुपाते हैं, हम अपने आप को ढकते हैं। किस लिए? इसलिए कि कोई दूसरा मुझे न देख ले, किसी की दृष्टि मेरे में न पड़ जाए। अर्थात वो दिगंबर वो दृष्टि है जिसकी दृष्टि में सर्वत्र आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सर्व दिशाओं में सब जगह वो केवल एक आत्म भाव का दर्शन करता है। उस आत्म दृष्टि को दिगंबर कहा गया है। ऐसी उसकी स्थिति है। तो भगवान शिव दिगंबर हैं और दिगंबर को बोले शरीर में धारण करने के लिए उनके पास क्या है, चिदा की एक भस्मी ही तो है। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था, ये भस्म अत्यंत पवित्र है। लोग कहते हैं ये तो मुर्दे की राख है, बड़ी वो है। इसीलिए भगवान शिव का जो रूप है नारायण, जो भगवान करते हैं वो हमें नहीं करना है, जो भगवान कहते हैं वो हमें करना है। चिदा की भस्मी को तो यूं तो संसार में बड़ी अपवित्र समझी जाती है, परंतु यदि गंभीरता से विचार करें तो ये भस्म अत्यंत पवित्र है। जिस पवित्र भस्म को भगवान शिव अपने अंगों में धारण करते हैं और इस वस्त्र को ही, भस्म को ही वस्त्र के रूप में सेवन करते हैं। ठंड लगती है, आजकल भी जो दिगंबर रहने वाले महात्मा होते हैं उन्हें जब ठंड लगती है तो सारे शरीर में भस्म मल लेते हैं। भस्म मल लेने के कारण उसे उस सर्दी का, उस शीत का उनको प्रभाव व्याप्त नहीं होता है। भगवान शिव ऐसे सनातन हैं कि चिदा की भस्मी को शरीर में धारण करते हैं। चिदा भस्मा लेपो गरल वसनम दिपट धरो, गले में विषैले सर्पों को धारण करते हैं। सर्प भी भगवान शंकर ने तो ऐसा नहीं कि केवल शिव ही सर्प को धारण करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात तो ये है कि यदि भगवान शिव गले में धारण करते हैं तो विष्णु भगवान भी कुछ कम नहीं, वो तो सैया बना के ही सो जाते हैं। वो तो उसी के सैया के रूप में सर्प का सेवन करते हैं। शतपथ ग्रंथों में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार पार्वती से मिलने की इच्छा हुई सिंधु सुता लक्ष्मी के मन में। सिंधु सुता लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो पार्वती को जाकर मिले। जब पार्वती से मिलने के लिए हिमालय में पहुंची तो लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी हैं, रत्नाकर उनके पिता हैं, भगवान नारायण की प्रिया हैं, उन्हें तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लक्ष्मी जी जब गई तो अपनी चमक दमक ठाट बाट के साथ सज समर के बहुत सुंदर बनकर के बड़ी अच्छी तरह से गई, और वहां माँ पार्वती हिमालय में बैठी हुई हैं, भगवान शिव के संग में रहती हैं, अवधूत उनके पति हैं, अवगण दानी है, दान में दे दिया सब कुछ, रावण को लंका दे दी, बनाई थी बड़ी मुश्किल से, सब दे दिया, वो भी कुछ नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पर्वत में रहते हैं, और कोई वस्त्र अलंकार आभूषण उनके संग में कुछ है नहीं। भगवान शिव तो दिगंबर धारी मृग चर्म धारण करने वाले, गज चर्म धारण करने वाले, हाथी ने तपस्या की, गज ने तप किया, और तप करके भगवान शिव ने वरदान मांग लिया, प्रभु मैं सदैव आपके संग रहूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा चर्म का हम वस्त्र बनाकर अपने अंग में धारण करेंगे। गज चर्म धारण करने वाले, बागंबर पर बैठने वाले, गज चर्म जिन्होंने हाथी का चर्म वो भी धारण किया हो, और ऐसे भगवान शिव जिनके पास कुछ नहीं है देखने में बाह्य रूप में, तो लक्ष्मी जी ने जाकर भगवान शिव उस समय ध्यानस्थ समाधि में थे, लक्ष्मी जी पार्वती जी से मिली। और ये संसार में होता है कि जो धनवान बहन होती है ना, दूसरी यदि कमजोर हो तो थोड़ा उस पर अपना रौब मारती है, उसे ये वो एहसास कराती है। तो लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से व्यंग किया भगवान शिव के लिए, क्वास्ते भिक्षुकम, भिक्षुक शिव कहाँ है, व्यंग है कि क्वास्ते भिक्षुकम, भिक्षुक शिव कहां, भिकारी शंकर तेरा कहां है। पार्वती जी को लगा कि ये तो मेरे पति को भिखारी बता रही है, तो पलट कर पति पर व्यंग हो गया है। अब लक्ष्मी जी ने दूसरा अपना बाण निकाला। लक्ष्मी जी कहने लगे, अच्छा बताओ, क्वास्ति पन्नग भूषणम, जो पन्न सर्प को आभूषण बना करके अपने गले में डालने वाला जो शिव है सफेदों का जैसा, वो कहाँ है, वो कहाँ है बताओ। तो लक्ष्मी पार्वती जी ने सोचा कि इसने तो मेरे पति के ऊपर फिर इसने व्यंग कर दिया, तो कहा शेष शयनश्चस्ति, शेष के ऊपर सोता हुआ पाताल में होगा, चली जाओ उसके पास, शेष के पलंग पर जो सोया हुआ हो है वही चली जाओ, शेष को बनाकर वहां पर भी व्यंग चला नहीं। तब क्वास्ति पशुपति, तेरा पति तो पशुपति है, भगवान शंकर का नाम है ना पशुपति, गिरिजापति पशुपति, तो बोला कहाँ है तेरा पति पशुपति। पशु माने पशु, अज्ञान, जानवर को पशु कहते हैं, पशु का अर्थ है अज्ञान। जानवर किसी को हम अज्ञ तो कहते हैं, ये तो बिल्कुल जानवर जैसा है, माने किसी के अज्ञान की पराकाष्ठा को हमें इंगित करना होता है, इशारा करना होता है, तो हम लोग बोलते हैं ये क्या है, बिल्कुल पशु जैसा इसका आचरण है। परंतु कभी गंभीरता से सोचना नारायण, जिन पशुओं के साथ मनुष्य की हम तुलना करते हैं, कोई कोई इंसान तो ऐसे होते हैं कि पशु के साथ तुलना करने के योग्य भी नहीं होते। एक बार इन पशुओं ने, इन पक्षियों ने मिलकर के आपस में मीटिंग की। मीटिंग की, क्या मीटिंग की कि देखो हमारा बड़ा भारी अपमान होता है, जहां कहीं भी हमारे में कोई कमी गिननी होती है तब हमें यही कहा जाता है कि ये पशु है। परंतु जब कभी मनुष्य की प्रशंसा करनी होती है तब भी हम किससे इनकी तुलना करते हैं, किसी की बहुत अच्छी आंखें हो तो क्या बोलते हैं, क्या सुंदर आंख है इसके, मृग के जैसे, ये तो वही सुंदर मृग नहीं है। सुंदरता में भी पशुओं का उपयोग करते हैं, पक्षियों का उपयोग करते हैं। और कभी किसी की बुराई करनी होती, क्या शकल लेके बैठा हुआ बंदर की जैसे, तो हम वहां भी उसका वो करते हैं। अच्छाई सुंदरता बुराई में, अच्छाई बुराई से जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है वो तो है पशु पक्षियों से, तो हम तुलना करते हैं। मनुष्य सोचे कि वास्तव में वो है क्या, क्या वास्तव में वो है क्या जिसकी तुलना पशु और पक्षियों के साथ हो रही है, वो आखिर है क्या, वो पक्षी है अथवा पशु है। यदि उसके अंदर ज्ञान है, स्वस्वरूप का बोध है, तो वह परम परमानंद स्वरूप सर्वात्मा शिव है। यदि उस विवेक से वो शून्य है तो पशु पक्षी से अधिक उसका कोई महत्व नहीं है। ये सुंदरताएं ये पशुओं में भी होती है और पक्षियों में भी होती है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इन्हीं चीजों से हमारी विशेषता है। तो अज्ञान का द्योतक है पशु, भगवान का नाम है पशुपति, अर्थात जो अज्ञानी जीव है, जीव भाव है पशु, और जीव भाव के जो स्वामी है, जीव अज्ञान के कारण है, और इस समस्त जीवात्मा के जो पति है, स्वामी है, उन्हीं का नाम पशुपति है, भगवान शिव। इसलिए पशुपति मंत्र ही क्या है, पशुपति को प्रसन्न करने का मंत्र है ओम नमः शिवाय, शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय नमः। ये मंत्र है, इस मंत्र से भगवान शिव पशुपतिनाथ को प्रसन्न किया जाता है। ओम नमः शिवाय, सुबह सुबह कुरु कुरु शिवाय नमः, ये मंत्र है भगवान पशुपति का। अर्थात भगवान शिव करने वाले, सुबह सुबह कुरु कुरु शुभ शुभ करने वाले, अर्थात शुभ को शुभ करने वाले भगवान शिव हैं, पर उनका नाम है पशुपतिनाथ। कहाँ है पशुपति? तेरा पति जो पशुपति है वो कहाँ है? पार्वती जी ने उत्तर दिया, गोकुलश्च अस्ति, गोकुल में चली जा, वहां गाय चराते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ तुझे नजर आ जाएगा, चली जाओ वहां। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये मेरे कोई भी तर्क यहाँ काम नहीं किए, व्यंग काम नहीं किए, इनका बराबर मुझे उत्तर मिलता रहा, समानता होती रही। तो फिर लक्ष्मी जी बोली, अच्छा तो बहन देख, तूने जो निर्णय लिया अपने पति के वरण में, मुझे लगता है कि वो तेरा वरण कुछ अच्छा नहीं था। अभी भी मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुम अपने निर्णय को बदल लो। तुमने जिस पति का वरण किया है वो तो अवधूत है, दिगंबर है और अमंगलिक रूप को धारण करने वाला है, चिदा के भस्म आदि को, इसलिए तुम अपने निर्णय को मैं समझती हूँ कि अभी भी तुम्हें बदल देना चाहिए।